उपस्थित देशप्रेमी प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनीगण, वैसे तो दुनिया में हमेशा परिवर्तन चलता रहता है। विविध देशों में विविध उथल पुथल चलती रहती है, किंतु विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाली घटनाएं बहुत कम रहती है। वैसे चलता ही रहता है, युद्ध चलता रहता है, क्रांति चलती रहती है, सत्तांतरण चलते रहता है, किंतु विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाली घटनाएं कभी कभी होती है। पिछले 60 साल में ऐसी दो घटनाएं हुई है। 6 जून 1945 को जनरल आइजनहावर ने मित्र राष्ट्रों की सेना को यूरोप के कॉन्टिनेंट पर उतारा, फ्रांस में। वो एक दिन ऐसा था जो विश्व के इतिहास को मोड़ देने वाला था। और दूसरा दिन 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ हुआ, वह दिन विश्व के इतिहास को नया मोड़ देने वाला था। अब पहली घटना जब हुई तो दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, किंतु उनके ध्यान में आया कि अब तक जो उनका साम्राज्य दुनिया भर चल रहा था, वैसा साम्राज्य चलाना अब संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का ऐसा दबाव था कि अपने उपनिवेशों को स्वराज्य देना उनके लिए बाध्य हो गया था। सभी को स्वराज्य मिला, भारत बड़ा देश है उसको भी मिला, सिंगापुर छोटे से छोटा उसको भी मिला, सभी देशों को स्वतंत्र करना उनके लिए बाध्य था अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण। किंतु यह एक बड़ा संकट भी था उनके लिए। पहले दुनिया भर में उनकी एक ऐसा रुआब था कि ये देश बड़े समृद्ध है, किंतु वास्तव में उनकी समृद्धि अपने पैरों पर नहीं थी, उपनिवेशों का शोषण करते हुए वो समृद्ध थे। अब उनके सामने एकदम प्रश्न आया कि अपने उपनिवेशों को हम यदि स्वराज्य देते हैं, स्वराज्य देने के बाद शोषण कैसे करेंगे, और शोषण यदि बंद हो जाता है तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। माने परिस्थिति ऐसी थी कि उनकी ही अर्थव्यवस्था चरमराने लगती यदि वो दूसरे देशों का शोषण बंद हो जाता। लेकिन कैसे शोषण कौन करने देगा, जो नवस्वतंत्र देश है वहाँ के स्वाभिमानी लोग ये पसंद नहीं करेंगे कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी और कोई उनके देश का शोषण करे। उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तभी से योजना बनाना शुरू किया, स्ट्रेटेजी रणनीति बनाना शुरू किया। यह सोच लिया कि बगैर शोषण के हम जिंदा नहीं रह सकते, किंतु शोषण करने के लिए कौन तैयार होगा शोषण होने देने के लिए, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि ये जो सारे नव स्वतंत्र देश है, अब एक टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखिए, नव स्वतंत्र देश, तृतीय विश्व के देश, विकसनशील देश और दक्षिणी देश, ये सब एक ही देश है, वही देश है। उनके लिए ये चार संज्ञाएं संदर्भ के अनुसार आती है, कभी नव स्वतंत्र देश, कभी विकसनशील देश, कभी तृतीय विश्व के देश, कभी दक्षिणी देश। तो उन्होंने यह सोचा कि पहली बात कि इन सभी देशों में ऐसी कुछ तरकीब हम करें। अब ये जो पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश थे, दुनिया का नक्शा ऐसा है एटलास के सारे पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश उत्तर में आते हैं और सारे गैर गोरे देश जो विकसनशील दक्षिणी नवस्वतंत्र तृतीय विश्व के वो सारे दक्षिण में आते हैं। इसलिए ये भी टर्मिनोलॉजी चलती है कि दक्षिणी देश माने पुराने उपनिवेश, उत्तरी देश माने पूर्व साम्राज्यवादी गोरे देश। और उनका नेतृत्व उस समय अमेरिका के तरफ था। दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका एकदम दुनिया का नेता माना गया क्योंकि सबसे कम हानि युद्धमान देशों में अमेरिका की हुई थी। बाकी सब देशों के भूमि पर लड़ाई लड़ी गई थी, अमेरिका दूर थी इसलिए अमेरिका के जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी गई, इसलिए सबसे कम हानि उनकी हुई थी। और फिर उनकी अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी, उनको दुनिया का नेता माना गया। अब दो तरफ दो बातें हुई, सबका शोषण कैसे करना, इसलिए रणनीति ये बनाई कि सभी नव स्वतंत्र देशों में अमेरिका के लिए उपयुक्त, मैं अमेरिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अमेरिका ये माने सभी गोरे देशों के लिए उपयुक्त अनुकूल ऐसे लोगों को सरकार में लाना, राज्यकर्ता इन देशों के ऐसे ही हो जो अमेरिका के लिए अनुकूल हो गए। और स्वाभाविक रूप से यदि ऐसे लोग नहीं आ सकते तो खून खराबा करते हुए भी अमेरिका के लिए अनुकूल लोगों को लाना, जैसे चिली में एलेंडे का खून किया गया। तो राज्यकर्ता अपने अनुकूल रहे, पहली बात। रणनीति का दूसरा हिस्सा ये था कि इन सभी देशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में पूरी तरह अंधेरे में रखना। टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र है, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं जो है उनके बारे में अंधेरे में रखना। फिर तीसरा था कि ये जो अपने लिए अनुकूल राज्यकर्ता लाए गए, जनता को पता न लगते हुए, उनके पार्लियामेंट को पता न लगते हुए, उनके साथ गोरे देशों के लिए अनुकूल ऐसे समझौते करना। फिर ये समझौते जैसे के वैसे प्रकाशित नहीं करना, उसमें से जो हिस्सा अच्छा होगा, मीठा मीठा गप गप, तो उतना ही प्रकाशित करना, पूरा प्रकाशित नहीं करना, ताकि एकदम विरोध नहीं होता। और जब अमल करना शुरू होता है फिर लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा घातक समझौता हुआ, किंतु समय पे क्या करना, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लगता है कि आकाश से कुल्हाड़ी गिर गई, अब क्या करना, फिर कोई प्रतिकार नहीं कर सकेगा, अपना काम हो जाएगा। ये उनकी रणनीति थी। अब उसके अनुसार वो चले, सभी देशों में चले, अपने देशों में भी चले। अब उधर दूसरी बात थी, अमेरिका दूसरे महायुद्ध के पश्चात दुनिया का नेता बन गया, यहां तक तो ठीक है, किंतु इसके कारण उसके लोगों में एक हर्षोन्माद निर्माण हुआ। अंग्रेजी में कहते हैं यूफोरिया, यूफोरिया यानी हर्षोन्माद, कि अब हम ही है, हम दुनिया के नेता है, जब तक आसमान में चांद सूरज है हम ही दुनिया के नेता रहेंगे, जैसा राज्यकर्ता के मन में हमेशा रहता है कि अब हम पावर में हैं तो जब तक आसमान में चांद सूरज है हम ही पावर में रहेंगे, ऐसी ही भ्रांति अमेरिका के लोगों के मन में थी। तो उनको लगा कि हम अखंड समृद्धिमान रहेंगे। तो वो भौतिकतावादी मटेरियलिस्ट होने के कारण उपभोगवादी थे, कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिज्म ये कोई इज्म नहीं है, जब से धरती पर जीवन निर्माण हुआ तब से कंज्यूमरिज्म निर्माण हुआ। छोटे से छोटा प्राणी भी कंज्यूमरिस्ट ही होता है। ज़्यादा गर्म हुआ तो वो ठंडे प्रदेश में आता है, ज़्यादा ठंडा हुआ तो गर्म प्रदेश में जाता है। तो कंज्यूमरिज्म, उपभोगवाद, ये सृष्टि के प्रारंभ से है। तो उपभोगवाद बहुत बढ़ गया। अब कैपिटलिज्म का, उपभोगवाद का एक अंतर विरोध यह है कि दुनिया में उपभोग के साधन सीमित है। सभी संपूर्ण दुनिया में उपभोग के साधन सीमित है और मनुष्य की उपभोग की इच्छाएं असीम हैं, अमर्याद है। तो उपभोग की इच्छाएं अमर्याद, उपभोग के साधन सीमित, ये अंतर विरोध कैपिटलिज्म में, कंज्यूमरिज्म में है। अमेरिका में यही हुआ, उपभोग की इच्छाएं बढ़ती गई। शुरू शुरू में 10-15 साल कुछ लगा नहीं, लेकिन उपभोग के साधन सीमित थे। और फिर दुनिया के नेता के नाते जो उनका स्थान था वो भी खतरे में आने लगा। तो उन्होंने पहले से जो योजनाएं बनाई थी उसमें से एक योजना ये थी कि 1948 में ही उन्होंने एक संस्था बनाई, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट। इसका उद्देश्य क्या बताया? उद्देश्य बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का व्यापार ठीक चले, सबके लिए अनुकूल चले, व्यवस्थित चले, इसलिए हम ये संस्था बना रहे हैं। अब उसमें एक ही एजेंडा पर था कि वस्तुओं का व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स, गुड्स यानी वस्तु, ये एक बनाया। उस समय सभी वस्तुओं में अमेरिका आगे था तो इसमें लाभ अमेरिका को होगा। बाद में ऐसा हुआ कि कई चीज़ों में अमेरिका पिछड़ गया, जापान आदि कुछ देश आगे बढ़ गए। तो केवल गुड्स यानी वस्तुओं के व्यापार के आधार पर अमेरिका को अपने स्टेटस कायम रखना कठिन हो गया। तो गैट के इसमें 1986 में उरुग्वे राउंड में उन्होंने कहा कि भाई और 4 आइटम्स गैट के टेबल पर आने चाहिए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, गुड्स है, सर्विसेस है, कई ऐसे 4 आइटम्स उन्होंने गुड्स के साथ, ट्रिप्स, ट्रिम्स, सर्विसेस और एग्रीकल्चर, 4 आइटम्स और लाने के लिए कहा। तो गैट्स में जो विकसनशील देश थे उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो ओरिजिनल ये नहीं था, केवल गुड्स के बारे में था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम किसी को मानेंगे नहीं, ये 4 आइटम्स आने ही चाहिए। दादागिरी करते हुए उन्होंने वो आइटम्स लाए। बाद में उनके ये ख्याल में आया कि इससे भी अमेरिका अपने को बचा नहीं सकता, तो इसलिए और भी आइटम्स लाने का उनका प्रयास चल रहा। इसी में से डंकल आपने सुना होगा, फिर बाकी बातें हुई। उधर 1972 तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर की हिम्मत अमेरिका में ये नहीं थी बताने की कि वास्तविकता क्या है, कि भाई उपभोगवाद के कारण हमारा देश नीचे जा रहा। यह सीधा बताना पॉलिटिकल लीडर के लिए कठिन था, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि भाई उपभोगवाद कम करो नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं की। अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जैसे फॉर्मूला दिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रेंड कंजम्पशन, अधिकतम उत्पादन, समानतर वितरण, कम से कम कंजम्पशन माने उपभोग, ऐसा कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। 1972 तक अर्थव्यवस्था इतनी गिरी अमेरिका की कि अब छिपाना कठिन हो गया। तो 1973 में उन्होंने एक कानून बनाया अर्थव्यवस्था को थोड़ा संवारने के लिए, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ। तो 1988 में एक नया बड़ा कानून बनाना पड़ा, ओमनिबस एक्ट, बड़ा कानून बनाना पड़ा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए, जिसमें वो सुप्रसिद्ध दो क्लॉजेस है, सुपर 301, स्पेशल 301, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अमेरिका अपने देश में किसका माल आयात होने देना ये तय करने का अधिकार अमेरिका को रहेगा। किसी भी देश का माल आया, अमेरिका को ऐसा यदि लगा कि ये माल आने के कारण हमारे अमेरिकन उद्योगों को हानि पहुंचती है, तो उनको अधिकार है कि वो माल उतारने नहीं देंगे। किंतु अमेरिका का माल किसी भी देश में यदि निर्यात होता है तो सभी देशों के लिए बाध्य है कि उन्होंने अमेरिका का माल उतारना ही चाहिए, लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो उनको दुश्मन कहा जाएगा, उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। माने डबल स्टैंडर्ड, अपने देश में कौन सा माल आने देना ये तय करने का अधिकार अमेरिका को है, ये किसी भी दूसरे देश को यह अधिकार नहीं। अमेरिकन माल आता है तो वो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो हम प्रतिबंध लगाएंगे, ये धमकी। तो ये 1988 का ओमनिबस कानून उन्होंने पास किया, किंतु उससे भी पोजीशन सुधरना कठिन था। तो अमेरिका धीरे धीरे नीचे जा रही। अब और भी उन्होंने कुछ तरकीबें लाई है, वो सारा मैं गहराई में जाकर बोलना आपके लिए बड़ा बोर हो जाएगा। वास्तव में मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इतना टेक्निकल है कि बहुत सारे लोगों को नींद आने लगी होगी, क्योंकि विषय यही टेक्निकल है, अब कोई चारा नहीं। पॉलिटिकल भाषण लच्छेदार हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, किंतु ये आर्थिक प्रश्नों का भाषण लच्छेदार नहीं हो सकता, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला ही हो सकता है। तो फिर इन्होंने अपने साधन के रूप में एक संगठन निर्माण किया जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ एक बात का मैं स्पष्टीकरण करूँ, मैं जब अमेरिका अमेरिका कहता हूँ तो कृपा करके ऐसा मत समझिए कि मैं अमेरिकन जनता के विरोध में बोल रहा हूँ, जनता के विरोध में नहीं बोल रहा। अमेरिका के सर्वसाधारण लोग उतने ही सज्जन और इनोसेंट है जितने आप और हम हैं। मैं जब अमेरिका शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसका अर्थ है ये कि सभी गोरे देश, पूर्व साम्राज्यवादी सभी गोरे देश, जिनको विकसित देश डेवलप्ड कंट्रीज भी कहा जाता है, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज के राज्यकर्ता और डेवलप्ड कंट्रीज के सरमाएदार पूंजीपति, इनकी जो साठगांठ है, राज्यकर्ता और कैपिटलिस्ट, इनकी जो साठगांठ है उसको हम कंडेम कर रहे हैं। अमेरिका के या बाकी गोरे देशों के सर्वसाधारण नागरिकों के खिलाफ हम नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी मालूम नहीं कि ये ऊपर के लोग क्या बदमाशी कर रहे हैं। तो जब अब इतना हर समय बोलना तो कठिन है कि गोरे देशों के राज्यकर्ता और पूंजीवादी संस्थाएं इनकी साठगांठ का हम विरोध करते, हर समय बोलना कठिन है, इसलिए सुविधा के लिए हम अमेरिका शब्द का प्रयोग करते, लेकिन उसका अर्थ ये होता है अमेरिकन जनता से हमारा विरोध नहीं। तो इन लोगों ने ये विश्व व्यापार संगठन क्यों खड़ा किया? जब मैं विदेशी पूंजी कहता हूँ, फॉरेन कैपिटल, तो उसमें आते हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल्स। अब ये शुरू में उनकी इच्छा थी कि तृतीय विश्व के देशों पर अपना कब्जा जमाए, उनका शोषण करें। तो गैट के निगोशिएशन टेबल पर सभी विकसनशील देश इनके ऊपर दादागिरी करते हुए गोरे देश अपने निर्णय थोपते थे। तो उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद, इन्होंने सोचा कि ये जो दादागिरी कर रहे हैं इसका विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, तो ये जो गैर गोरे विकसनशील देश है उनको इकट्ठा लाना चाहिए। तो ये जो शोषण का प्रयोग चल रहा है उसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो इन्होंने भारत को कहा कि सबसे बड़े देश हम में से आप ही है। तो गैट के नेगोशिएशन में गोरे देशों का हम सब मिलकर विरोध करें आपके नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में। भारत ने नेतृत्व करने से इनकार किया। फिर महातीर मोहम्मद ने दूसरी तरकीब निकाली, एक कमीशन स्थापन किया, साउथ कमीशन। इन देशों के एक्सपर्ट्स को लेकर एक कमेटी बनाई, उसको साउथ कमीशन कहा। उसको काम दिया, क्या काम दिया, कि ये गोरे देशों का आर्थिक आक्रमण कैसे हो रहा, उनके आर्थिक साम्राज्य कैसे आ रहा और उसको रोकने के लिए क्या कारीगर उपाय हो सकते हैं, इसके लिए कमीशन बनाए। इस कमीशन की रिपोर्ट आई, वो पब्लिश भी हुई, चैलेंज टू द साउथ, यह रिपोर्ट का नाम है, आप कहीं भी मार्केट में दे ले सकते हैं, चैलेंज टू द साउथ। और उसका रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी जागरण मंच आज जो बातें बोलता है वही बातें उसमें, कि ये गोरे देश सबको आर्थिक गुलामी में डालना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहिए, उसके लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन, माने दक्षिणी देशों ने आपस में कोऑपरेशन करना वगैरह वगैरह, ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ। आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने लिखा है। अब ये किसने लिखा था, ये जो साउथ कमीशन था उसके अध्यक्ष के नाते महातीर मोहम्मद ने तांजानिया के नेरेरे को अध्यक्ष रखा था, और जिनके वैचारिक नेतृत्व में ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ वो सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आपको आश्चर्य होगा कि सारा जो डॉक्यूमेंट स्वदेशी जागरण मंच के विचारों के जैसा है, वो जिनके वैचारिक नेतृत्व में तैयार हुआ वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लेकिन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के नाते शपथ ली तो अंग्रेजी में कहते हैं एमनेशिया करके एक डिसीज होता है। एमनेशिया का मतलब होता है कि आदमी भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मेरा नाम क्या है, सब भूल जाता है, संपूर्ण विस्मरण। तो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बन गए संपूर्ण विस्मरण, एमनेशिया हो गया, और रिपोर्ट में उन्होंने जो लिखा था उसके विपरीत बोलना शुरू कर दिया। खैर, अब धीरे धीरे लोगों में जागरण होना शुरू हुआ। अब उनकी जो रणनीति मैंने बताई उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एक था कि जो वो करना चाहते थे वो तुरंत हो जाए, क्योंकि तुरंत न हुआ और लोग यदि सावधान हो गए तो फिर उसको अमल में लाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी। किंतु भगवान की इच्छा थी कि वो वैसा पूरा कर नहीं सके। इधर चाइना ने, पहले चाइना दबता था, धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी होने के बाद दबना बंद किया। जापान पहले दबता था, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक होने के बाद उन्होंने झुकना बंद किया। ये मलेशिया वगैरह तो पहले से अपने को बचाने के कोशिश में थे। फिर ये हुआ कि अमेरिका इतने तेजी से नीचे जा रहा था कि केवल गैर गोरे देशों का शोषण करने से ही उनकी भूख शांत होने वाली नहीं थी, पहले अमेरिका और यूरोप के सारे देश एक गुट में थे, अभी भी है, लेकिन बिल्कुल एक थे। जैसा अमेरिका कहेगी यूरोप के देश करेंगे। लेकिन अमेरिका को बचाने के लिए जैसे हम लोगों का शोषण करना आवश्यक उनके लिए था, यूरोप के देशों का भी शोषण करना आवश्यक हो गया। यूरोपियन कम्युनिटी के 12 देश थे, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया किसान और किसानी के बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि ऊपर के ऊपर एग्रीमेंट करते थे, वो पूरा पब्लिश नहीं करते थे, मीठा मीठा गप गप उतना ही पब्लिश होता था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। उसका क्रियान्वयन जब शुरू हुआ, अमल जब शुरू हुआ, तो एकदम किसानों को लगा कि अरे ये तो हमारे ऊपर आकाश से कुल्हाड़ी गिर गई। उन्होंने विरोध किया और विरोध में आंदोलन किया यूरोप के किसानों ने, और आंदोलन में उन्होंने मांग रखी जो दुनिया के इतिहास में पहली ही बार रखी गई। मांग रखी कि हमारे सरकारों ने जो हस्ताक्षर किए हैं समझौतों पर, वो हस्ताक्षर वापस लेने चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया के इतिहास में ऐसी मांग कभी आई नहीं कि हमारी सरकार ने समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो वापस लेने चाहिए। वापस तो नहीं लिए, लेकिन इस तरह की मांग दुनिया के इतिहास में पहली बार आई। इतना ही नहीं तो अमेरिका के लोगों का भी शोषण करना इनके लिए बाध्य हो गया, क्योंकि ये बहुत तेजी से अमेरिका नीचे जा रही थी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो उन्होंने और एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्ता। तीन ही देश आते, मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें पहले जब पब्लिश किया, ऐसा ही मीठा मीठा पब्लिश किया, जब अमल शुरू हुआ तब लोगों को पता चला, एकदम असंतोष भड़क गया। अब मेक्सिको के लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं, वो हाथ में राइफल लेकर खड़े हो गए, सेना लाकर उनको दबाया गया। कनाडा में इसके खिलाफ असंतोष हुआ जब क्रियान्वयन शुरू हुआ, और इतना घोर असंतोष था, और राज्यकर्ता दल के दुर्भाग्य से उसी समय इलेक्शंस आ गए। तो उस इलेक्शन में जिस रूलिंग पार्टी ने इस नाफ्ता पर हस्ताक्षर किया था उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया। केवल 2 मेंबर पार्लियामेंट उनके चुनकर आए, विरोधी दल का उनका राज्य हो गया। और विरोधी दल के प्राइम मिनिस्टर ने पहला पत्र क्लिंटन को लिखा कि ये जो आपने नाफ्टा किया है, हम जानते हैं कि किसी भी सुशिक्षित सुसंस्कृत सरकार का यह कर्तव्य है कि पुरानी सरकारों ने जो अभिवचन दिए होंगे उनका पालन करना, किंतु ये जो आपका एग्रीमेंट है वो ऑब्वियसली अनजस्ट एंड अनफेयर, स्पष्ट रूप से इतना अन्यायकारक है कि आई डिमांड रीनेगोशिएशन ऑन दिस सेम एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट पर फिर से नेगोशिएशन की मैं मांग करता हूँ। मेरा ख्याल है कि दुनिया के इतिहास में इस तरह की मांग फॉर द फर्स्ट टाइम उठाई गई कि जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए है उसी एग्रीमेंट पर फिर से नेगोशिएशन हो, ऐसी मांग फॉर द फर्स्ट टाइम आई है। यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने आपको बताया कि वहाँ के गरीब जनता को कुछ पता ही नहीं है क्या ऊपर के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो वहाँ उपभोक्ताओं का बड़ा संगठन जिसके प्रमुख है मिस्टर ना, उनका उच्चारण है नेडर लेकिन स्पेलिंग है NADIR। तो मिस्टर नेडर ये यूनाइटेड स्टेट्स के कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, उपभोक्ता संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने इनके खिलाफ उपभोक्ताओं का आंदोलन खड़ा किया। वहाँ के मजदूरों ने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया क्योंकि इनके योजना के कारण लाखों लोग मजदूर नौकरी से हटाए गए, लाखों परिवार बेघरबार हो गए। तो मजदूरों ने इसका विरोध किया, उपभोक्ताओं ने उसका विरोध किया, और हमको आश्चर्य हुआ कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अभी तक वो बताते नहीं थे। धीरे धीरे गोरे देशों के सब लोगों को जब पता चला, है तो वो गोरे देशों के लोग, किंतु ये जो गड़बड़ कर रहे इसका उपयोग गोरे देशों के सामान्य जनता के लिए नहीं है। जैसा मैंने कहा कि गोरे देशों के राज्यकर्ता और गोरे देशों के उद्योगपति पूंजीपति, गोरे देशों के राज्यकर्ता और गोरे देशों के उद्योगपति पूंजीपति, इनकी साठगांठ है, सामान्य जनता का इसमें लाभ नहीं। सामान्य जनता ने जब ये सारा पढ़ा तो वहाँ भी मानवतावादी कुछ लोग हैं जो बड़े इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, मानवतावादी है। ऐसे लोगों ने एक नया मंच खड़ा किया जिस मंच का नाम है द अदर इकोनॉमिक समिट। और इन हरामखोर लोगों की जहाँ बैठक होती है, G7 कंट्रीज की हर साल बैठक होती है, जहाँ बैठक होती है इनकी बैठक समाप्त तो होती है उसी जगह उसी शहर में द अदर इकोनॉमिक समिट की बैठक होती है और इनके खिलाफ रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। पिछले बार 2 साल के पहले मैं उधर गया था, डेनवर में एक कॉन्फ्रेंस थी, हमको भी बुलाया गया था, तो मैंने देखा 60 लोग थे आवेश के साथ इनके खिलाफ बोल रहे थे जितने आवेश के साथ हम लोग बोल रहे थे। माने अब उन लोगों में भी ये जागृति आ गई है। और हमने वहाँ ये बताया था कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल हो रहा है विकसनशील देशों का कि आप सब मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं, तो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे देशों में हो रहा, आप इनका विरोध कीजिए, खैर जो होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोरे देशों में भी मानवतावादी लोग इनके खिलाफ हो रहे। तो अमेरिका का जो विचार था कि खटाक से सारा कर लेना, कोई सावधान होने के पहले ही सारा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। अब विश्व व्यापार संगठन ये संस्था खड़ी की, काय के लिए खड़ी की, इनके जो नेफेरियस डिजाइंस माने दुष्ट खराब हेतु से जो काम वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक माध्यम के नाते, और उसके द्वारा वो सब देशों में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। अब इसमें पहला उनका है पेटेंट का कानून। अभी हमारे सरकार पर भी उनका दबाव है कि पेटेंट का कानून हमको चाहिए वैसा आप बदल दीजिए। वो क्या चाहते हैं, हमारे यहाँ भी पेटेंट का कानून है, 1970 का हमारा कानून है, अमेरिका का कानून दूसरे ढंग का है, वो चाहते हैं कि वैसा कानून हमारा बदल जाए। दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। एक तो है कि हमारे कानून में, और हमारा कानून अच्छा है ऐसा दुनिया के सब देशों ने कहा था, हमारे कानून में प्लांट्स का पेटेंट नहीं है, हर्बल मेडिसिंस का पेटेंट नहीं है, पशुओं का पेटेंट नहीं है, बीजों का पेटेंट नहीं है, उनके इसमें सबका पेटेंट है। और पेटेंट भी हमारे देश में जो है वो प्रोसेस का पेटेंट है, प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं है। माने जैसे च्यवनप्राश है, मानो गुरुकुल कांगड़ी ने च्यवनप्राश बनाया, तो गुरुकुल कांगड़ी जिस प्रोसेस से च्यवनप्राश बनाती है उस प्रोसेस का वो पेटेंट ले सकते हैं, लेकिन च्यवनप्राश का पेटेंट नहीं होगा। दूसरा कोई दूसरे ढंग से भी च्यवनप्राश बनाता है तो उसको बनाने का अधिकार है, मार्केट में लाने का अधिकार है। वहाँ प्रोडक्ट का माने आपने एक बार कोई किसी भी प्रोसेस से चीज बना ली, च्यवनप्राश बना लिया, फिर च्यवनप्राश का ही पेटेंट है, कोई दूसरे रास्ते से च्यवनप्राश बनाया तो भी उसको मार्केट में लाने का अधिकार नहीं। अब इसमें वो चाहे जिस बात का पेटेंट कर लेंगे, हमारे मैंने कहा ना कि लोगों को अंधेरे में रखना ये सबसे बड़ी बात है, तो हमारे देश में भी यही हुआ। गेट के बारे में चर्चा हुई, डंकल के बारे में चर्चा हुई, किंतु गेट पर जब हमारे लोगों ने हस्ताक्षर किया, सरकार ने पार्लियामेंट को अंधेरे में रखकर किया। वैसे 13 दिसंबर 1996 को जो सिंगापुर में इन्होंने दस्तखत किया कि हम WTO के मेंबर बनते हैं, 12 दिसंबर तक भारत सरकार ने घोषणा की हम अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले। 13 तारीख को एकदम आत्मसमर्पण कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये सारा क्यों होता है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बड़े बड़े नेता परचेसेबल है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ यह स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि सेक्रेटरीज तो परचेसेबल है ही, नेता और मिनिस्टर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको विदेशी पूंजी खरीद सकती है। ऐसे पुराने उदाहरण है, अब नए क्या होगा क्या नहीं हम बता नहीं सकते। ये केवल पार्टी का सवाल नहीं है, विदेशी पूंजी के हाथ बहुत लंबे हैं। कौन खरीदा नहीं जाएगा यही देखने की बारी हमारे ऊपर आने वाली है। तो इस तरह से अब पेटेंट का कानून यदि आता है, अब देखिए नीम का उन्होंने पेटेंट कर लिया, हल्दी का पेटेंट कर लिया, बासमती का पेटेंट कर लिया, हमारे लोगों को पता ही नहीं। अमेरिका में पेटेंट कर लिया, अपने को पता नहीं, और फिर बताएंगे कि हमने हमारा पेटेंट है, कोई यहाँ बासमती नहीं लगा सकता, कोई नीम और हल्दी यहाँ नहीं बना सकता, बनाया तो मार्केट में नहीं ला सकता। क्योंकि बोले हमने इसके ऊपर कुछ प्रयोग किए इसलिए हमारा पेटेंट हो गया। पेटेंट यानी एकाधिकार, सर्वाधिकार। अरे नीम पर, हल्दी पर, बासमती पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? सैकड़ों साल से हमारे किसानों ने प्रयोग करते हुए, और नीम है, हल्दी है, बासमती है, और भी सारे प्लांट्स हैं हमारे यहाँ के, औषधि के जो वनस्पतियाँ हैं वो वहाँ ले जा रहे हैं, वहीं परस्पर उनका पेटेंट कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं। और किसानों के लिए उनके हर एक प्लांट का वो पेटेंट करना चाहते हैं, और बीजों का पेटेंट। अब बीजों का पेटेंट इसका मतलब क्या है कि हमारी कृषि हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अमेरिका के हाथ में जाएगी। पेटेंट का अर्थ समझ लीजिए कि अभी क्या होता है। उदाहरण के लिए मैं केवल एक बताता हूँ, लंबा बोलना उचित नहीं कि जैसे बीजों का पेटेंट है उसका अर्थ क्या होता है। आज हमारे देश के सभी प्रदेशों में ऐसी पद्धति है कि इस समय फसल आई तो इस समय के फसल से हर किसान कुछ बीज अगले फसल के लिए बचा कर रखता है, और अगले फसल के समय उसी बीज से, अपने ही बीज से वो अगली फसल उगाता है। अब इन्होंने यदि एक बार बीज का पेटेंट कर लिया तो हमारे किसान को अपने बीजों से दूसरी फसल निकालने का अधिकार नहीं रहेगा, अमेरिका से ही बीज लेना पड़ेगा, वो कहेंगे उस कीमत पर लेना पड़ेगा, अपना बीज बचाकर वो अपनी दूसरी फसल नहीं निकाल सकता। और यदि मानो किसी ने कहा कि हम तो ये कोने में पड़े हैं, हमने निकाली तो किसको पता चलेगा, ऐसा नहीं, उनके गुप्तचर रहेंगे सारे देश में, आपने यदि एक कोने में अपने बीजों से अपनी फसल निकाली, वाशिंगटन में रिपोर्ट जाएगा, वाशिंगटन से एक पत्र केवल दिल्ली को आएगा कि अबू रोड के किसानों ने कानून का भंग किया है, उनको जेल में डालना चाहिए। अब शुरू से कानून का ये नियम है कि जो आरोप लगाता है उसके ऊपर ओनस होता है, ओनस यानी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है कि उसका आरोप सही है वो सिद्ध करे। ये यहाँ उल्टा न्याय ऐसा है कि वाशिंगटन यदि पत्र लिखता है कि अबू रोड के किसानों ने कानून का उल्लंघन किया, उनको जेल में डालो, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है ये बताने की कि इन्होंने उल्लंघन किया। अबू रोड के किसानों पर जिम्मेवारी डाली गई कि उन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि हमने कानून का भंग नहीं किया। ऐसा कभी दुनिया में कानून बना है पहले कि आरोप करने वाले पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेवारी नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर जिम्मेवारी कि हमने तो कोई खराब काम नहीं किया। तो हमारे बीजों के लिए भी, हमारे पशुओं का भी, चाहे बकरी रहे, गाय रहे, बैल रहे, भैंस रहे, गधा रहे, सबका पेटेंट वो कर सकते हैं, और फिर उनके उनको रॉयल्टी देकर ही आप इन पशुओं का उपयोग कर सकेंगे। और उद्योगों में तो इतना महान संकट आने वाला है, सभी उद्योगों में वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ अभी तक कानून में ऐसी व्यवस्था है कि एकदम सारे उद्योग उनके हाथ में नहीं जा सकते आज के कानून के मुताबिक। अब सरकार पर दबाव है कि वो सारे कानून रद्द कर दो और ऐसे कानून करो कि हम सीधे आकर उद्योगों को हाथ में ले जाए। ये सारा यदि हुआ तो हमारे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता, इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी क्या रहेगी। इसलिए स्वदेशी का जो संघर्ष है, ये स्वदेशी का संघर्ष माने किसान पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में न जाए, उनके बीज, उनके पशु, उनके प्लांट्स, इनका पेटेंट वो न कर सके, वनस्पतियों के पेटेंट वो न कर सके, औषधि वनस्पतियों के, फिर हमारे उद्योग गोरे देशों के हाथ में न जाए। और इतना यदि हाथ में गोरे देशों को गया तो हमारी स्वतंत्रता तक का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए स्वदेशी की लड़ाई या स्वतंत्रता की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है, मजदूरों को बचाने की लड़ाई है, उद्योगों को बचाने की लड़ाई है, किसानी को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है। यह समझकर हम सभी लोगों ने, जो देशभक्त है उन्होंने स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, संप्रभुता, सॉवरेंटी, इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। बड़े मुश्किल के बाद 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र बने, वो जो स्वातंत्र्य आया वो अब हाथ से निकलने वाला है। और इन सारे बातों की जानकारी हमारे नेता जनता को नहीं दे रहे। गोरे देश भी यह चाहते हैं कि आम जनता को आर्थिक बातों का पता न चले, हमारे नेता भी ये जानकारी नहीं दे रहे। और इसलिए हमने जागरूक होकर स्वदेशी का आंदोलन चलाना चाहिए और अपने देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता रखना चाहिए। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।